लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सीयों की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे, वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सीयों का कोई गीत सुनाओ। हम पराए देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाए। श्रोताओ, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 137वां भजन। 9 पदों वाला यह भजन बाबुल में निर्वासित इसराइलियों का गीत है। तिग्रिस और यूफ्रेटिस से प्रवाहित नहरों की जल धाराओं के पास बैठकर इसराइल के निर्वासित शोक मनाते हैं। वे दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर अपने प्रिय देश इसराइल, जेरूसलम नगर और सीयों पर्वत की याद कर रोते हैं, किंतु उनके आत्ताई उन्हें शोक भी मनाने नहीं देते। अत्याचारी उन्हें गीत गाने का आदेश देते हैं। उन्होंने मजनू के पेड़ों पर अपनी वीणाएं टांग दी थी। इसका अर्थ है कि गाना बजाना और खुशियां मनाना वे भूल गए थे, किंतु अत्याचार करने वाले उनसे आनंद के गीत चाहते थे। वे उनसे सीयों का कोई गीत सुनाने के लिए कहते थे। इस पर उनके मन में उठी कड़वाहट बाहर आती है और वे कह उठते हैं, हम पराए देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं। श्रोताओ, इन शब्दों पर मनन करते हुए हमने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि अत्याचारियों के समक्ष भी इसराइलियों ने ईश्वर में अपने विश्वास का परित्याग नहीं किया था और वे उनके समक्ष 46वां और 48वां भजन गाने लगे थे। निर्वासन में भी वे साहसी, विचारशील और विश्वासी लोग थे। वे अपनी व्यथा में जेरूसलम की याद करते थे, जो कि अब खंडहर हो चुका था। वे सीयों पर्वत की याद करते हैं और 46वें भजन के दूसरे और तीसरे पदों के अनुसार कहते हैं, ईश्वर हमारा आश्रय है और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। और फिर 48वें भजन के तीसरे और चौथे पदों में जेरूसलम के विनाश के बावजूद ईश्वर में भरोसा रखना नहीं छोड़ते। कहते हैं, सीयों का पर्वत ईश्वर का निवास और राजधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। यहाँ श्रोताओं, हम सबसे यह आग्रह किया जा रहा था कि भले ही हम पर अत्याचार हो, हम दुख कष्टों से घिर जाएं, हमारा सब कुछ नष्ट होता प्रतीत हो, तब भी हम ईश्वर की कृपा और उनकी महती दया पर भरोसा रखना न छोड़ें, क्योंकि ईश्वर में हमारा दृढ़ विश्वास ही हमें कष्टों से उबार कर सुख और आनंद की अनुभूति करा सकता है।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम।
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 137वें भजन के 5वें, 6वें और 7वें पदों में हम पढ़ते हैं, जेरूशलेम यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे याद न करूं, यदि मैं जेरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद न मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। प्रभु एदोमियों को याद कर जो जेरूशलेम की पराजय के दिन कहते थे, ढा दो ढा दो उसे, नींव तक ढा दो। श्रोताओ, ध्यान रखने योग्य तथ्य यह कि निर्वासन में अनेक कष्ट भोगने के बावजूद इसराइल के लोगों ने अपना विश्वास नहीं खोया था, जबकि स्वाभाविक तो यह सोचना होता कि ईश्वर ने उनका परित्याग कर दिया था, ईश्वर उन्हें भूल गए थे, ईश्वर ने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को भुला दिया था। यरूशलेम नगर तहस नहस हो गया था, जेरूशलेम का मंदिर पत्थरों के ढेर से अधिक और कुछ नहीं बचा था, दाऊद के वंश का नामो निशान मिट गया था, तथापि लोगों का भरोसा ईश्वर पर कम नहीं हुआ। यह बात वास्तव में उल्लेखनीय है कि निर्वासन के दुख से घिरे रहने के बावजूद वे कहते हैं, जेरूशलेम यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं जेरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद न मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। उनका विलक्षण अद्भुत और अनूठा विश्वास सचमुच में असाधारण था, जो युग युगांतर तक के लोगों के लिए एक आदर्श है। फिर भजन के 7वें पद में प्रभु से प्रार्थना करते हुए निर्वासित इजरायली एदोमियों को याद करते हैं, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते थे। परंपरा के अनुसार एदोमी याकूब के भाई एसाव के वंश के थे। एसाव अपने भाई याकूब से घृणा करता था, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के 41वें पद के अनुसार उनके पिता ने याकूब को आशीर्वाद दिया था। इस पद में लिखा है, एसाव याकूब से बैर करता था, क्योंकि उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। एसाव ने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्द ही आने को हैं, उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। अपने सबसे कठोर दिनों में भी निर्वासित इजरायली उन्हीं एदोमियों की याद कर रहे थे, जो जेरूशलेम की पराजय के दिन कहते थे, ढा दो उसे, नींव तक ढा दो। आगे स्तोत्र ग्रंथ के 137वें भजन के अंतिम दो पद वास्तव में बड़े विचित्र पद हैं, जिनमें कहा गया है, बाबुल की पुत्री तेरा विनाश निश्चित है, धन्य है वह मनुष्य जो तेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा कि तूने हमारे साथ किया है, धन्य है वह मनुष्य जो तेरे दुधमुहे बच्चे को उठाकर चट्टान पर पटक देगा। श्रोताओ, बाबुल के विनाश की बात तो समझ में आती है, किंतु इस खंड का आखिरी पद हमें असमंजस में डाल देता है। क्या सचमुच में ईश्वर चाहते थे कि कोई दुधमुहे बच्चों को उठाकर चट्टान पर पटक दे? क्या प्रभु ईश्वर इतने अधिक कठोर हो सकते हैं कि ऐसा होने दें? हमारे मनोमस्तिष्क में इन प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। वास्तव में 137वें भजन का अंतिम पद हमारी समझ से बाहर है, हमारी बुद्धि के परे है, जिसकी व्याख्या हम सावधानी पूर्वक अगले प्रसारण में करने का प्रयास करेंगे। आज की व्याख्या हम इसी तथ्य तक सीमित रखें कि निर्वासितों का विश्वास इतना विलक्षण, इतना अद्भुत और इतना अनूठा था कि अपार कष्ट भोगने के बावजूद वे अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहे।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है। दुर्ग बनाओ शरणागत में, प्रभु ही मेरा रक्षक है, फिर मुझको किस का डर है, फिर झुक जाऊं क्यों कर मैं, दुर्जन मुझ पर मानो मुझे निगल जाए, तो मेरे वे शत्रु विरोधी स्वयं धरा पर गिर।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पाप फ्रांसिस ने काले धन को श्वेत करने एवं आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने की समस्या का समाधान करने के लिए उठाए गए उपायों का मूल्यांकन करने वाली यूरोपीय समिति के विशेषज्ञों का वैटिकन में स्वागत किया। उन्होंने उनके इस कार्य को जीवन की रक्षा, पृथ्वी पर मानव जाति के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं आर्थिक प्रणाली जो कमजोर और सबसे जरूरतमंद लोगों को शोषित नहीं करती उनसे नजदीकी से जुड़ा बताया। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, इस दोहरे मोर्चे पर आपका काम मेरे दिल के लिए विशेष रूप से प्रिय है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम रुपये के साथ हमारे संबंध पर पुनः चिंतन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि कई स्थानों पर मानव व्यक्ति के ऊपर रुपये के प्रभुत्व को यूं ही मान लिया जाता है। कभी कभी धन इकट्ठा करने के प्रयास में यह कहां से आता है इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इससे अधिक या कम वैध गतिविधियां उत्पन्न हो जाती हैं और इसके पीछे शोषण के तंत्र शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां धन को छूने में हमारे हाथों पर हमारे भाइयों और बहनों के खून लग जाते हैं। संत पापा ने धन का प्रयोग सकारात्मक काम पर लगाने का प्रोत्साहन देते हुए कहा कि भय अथवा परमाणु, रासायनिक एवं जैविक भय में धनराशि खर्च करने की अपेक्षा हमें संसाधनों का प्रयोग भुखमरी दूर करने एवं गरीब देशों के विकास के लिए करना चाहिए ताकि उनके नागरिक हिंसक अथवा काल्पनिक हल के पीछे न पड़े या उन्हें अधिक प्रतिष्ठित जीवन की खोज में अपना देश छोड़ना न पड़े। संत पापा ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लगता है कि पुराने व्यवस्थान में सोने के बछड़े की पूजा वापस हो गई है और पैसे की मूर्ति एवं एक अव्यक्तिक अर्थव्यवस्था की तानाशाही की निर्माम आड़ में सच्चे मानवीय उद्देश्य की कमी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से मुकाबला करने के उद्देश्य से ये नीतियाँ पैसे की निगरानी और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का एक माध्यम है जहाँ अनियमित या आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जाता है। यीशु ने मंदिर में खरीद बिक्री करने वालों को भगा दिया था और कहा था कि आप ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब धन अपना मानवीय चेहरा खो देता है तब वह मानव की सेवा नहीं करता बल्कि लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। यह एक प्रकार की मूर्ति पूजा है जिसका बहिष्कार कर सार्वजनिक भलाई के अनुरूप चीजों को पुनः व्यवस्थित करने हेतु हम सभी बुलाए गए हैं। पैसे को सेवा करना चाहिए न कि शासन। संत पापा ने कहा कि इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही वैटिकन ने धनराशि की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नैतिक व्यवस्था का उपाय अपनाया है। अंत में संत पापा ने मणिवाल समिति के विशेषज्ञों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जिन उपायों का वे मूल्यांकन कर रहे हैं वे एक स्वच्छ वित्त को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। संत पापा ने उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे अपने लिए प्रार्थना का आग्रह किया। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर को संस्कृति के लिए परम धर्म पीठ महिला परामर्श दल के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें शांति एवं नवीनीकरण के लिए संदेशवाहक बनने का प्रोत्साहन दिया। स्कॉटलैंड के धर्माध्यक्षों ने कोविड-19 महामारी के बीच पूजा स्थलों की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके अभाव में अवसाद और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। स्कॉटलैंड के धर्माध्यक्षों ने देश के 500 पल्लियों में पत्र भेजकर कैथोलिक समुदाय से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक सुरक्षा उपायों का पालन करें। पुरोहितों, पल्ली वासियों एवं स्वयंसेवकों के सहयोगों और कार्यों के लिए उनकी सराहना करते हुए धर्माध्यक्षों ने गौर किया है कि स्कॉटलैंड नाजुक बिंदु पर है। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की दर की ओर इशारा किया है जो पूरे स्कॉटलैंड में बढ़ रहा है एवं लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। इस विकट समय में धर्माध्यक्षों ने लोगों से कहा है कि वे वायरस के प्रसार की जोखिम को कम करने का प्रयास जारी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि हमारे पल्लियों और समुदायों में सभी संक्रमण नियंत्रण उपायों का पालन किया जाए। सरकार के दिशा निर्देशानुसार लोग सामुदायिक प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि वे उन स्थानों में सुरक्षा उपायों का पालन करें। विवाह और अंतिम संस्कार भी सम्पन्न किए जा सकते हैं, किंतु उनमें भाग लेने वालों की संख्या सीमित होनी चाहिए। पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि महामारी और आपदा के लंबे अनुभव से कलीसिया जानती है कि प्रार्थना और विश्वास की कमी कैसे राष्ट्रों की आध्यात्मिक भलाई एवं सार्वजनिक उपासना को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि राष्ट्रीय परेशानी के समय ईश्वर अपनी दिव्य सहायता प्रदान करते हैं। धर्माध्यक्षों ने रेखांकित किया है कि पहले से कहीं अधिक इस समय हमारे गिरजाघरों के द्वार को खुला रहने की जरूरत है और आज हमारी कड़ी मेहनत हमारे लिए और हमारे देश के लिए आशीर्वाद सुनिश्चित करेगी। पिछले कुछ महीनों में महामारी ने लोगों के जीवन में जो प्रभाव डाला है उस पर ध्यान देते हुए स्कॉटलैंड के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के उप अध्यक्ष धर्माध्यक्ष जॉन किनन ने गौर किया है कि अवसाद, निराशा और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि जीवन के सभी पहलुओं में सामान्य स्थिति न रहना बेचैनी और एकाकीपन की भावना को बढ़ा दिया है, जिसके कारण आध्यात्मिक सांत्वना की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। संत पापा फ्रांसिस ने स्पानी मासिक पत्रिका इल्मियो पापा को दिए एक साक्षात्कार में उन मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला है जो महामारी के समय उत्पन्न हुए हैं तथा उन्होंने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय बतलाए हैं। इल्मियो पापा पत्रिका के स्पानी संस्करण के निदेशक कार्मेन मगलोन ने संत पापा फ्रांसिस के साक्षात्कार पर बुधवार को एक लेख प्रकाशित किया। संत पापा ने भावी पीढ़ी एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वालों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव तथा अप्रवासी एवं कलीसिया के सेवकों के मिशन आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। संत पापा ने कहा है कि महामारी दुनिया को बदल रही है तथा हमें संकट में डाल रही है, फिर भी यह असंभव है कि संकट से उबरने के बाद पहले की स्थिति में लौटा जाए। या तो हम बेहतर रूप में बाहर आ सकते हैं या पहले से भी अधिक बुरी स्थिति में पड़ सकते हैं। हम किस तरह आगे बढ़ेंगे यह निर्भर करेगा कि हम संकट के समय किस तरह का निर्णय लेते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।